ملوک کی دوسری کتاب نواں باب یاہو اسرائیل کا بادشاہ۔
اور الیسا نے انبیاء زادوں میں سے ایک کو بلایا اور اسے کہا کہ اپنی کمر باندھ اور تیل کی یہ شیشی اپنے ساتھ لے اور راموت جلاد کو چلا جا۔ جب تو وہاں پہنچے وہاں تو یاہو بن یوشافات بن نمشی کو دیکھے گا اور اندر جا کر اسے اپنے بھائیوں کے درمیان سے اٹھا اور اسے اندر وار کی کوٹھڑی میں لے جا اور تیل کی شیشی لے اور اس کے سر پر انڈیل اور کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسا کر کے اسرائیل پر بادشاہ کیا، پھر تو دروازہ کھول اور بھاگ اور مت ٹھہر۔ تب وہ جوان یعنی نبی زادہ راموت جلاد کو گیا اور وہ اندر گیا تو دیکھو لشکر کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا، اے سردار، میرے پاس تیرے لیے ایک بات ہے۔ یاہو نے کہا، ہماری جماعت میں سے کس کے لیے؟ اس نے کہا، اے سردار، تیرے لیے۔ تب وہ اٹھا اور گھر کے اندر گیا تو اس نے اس کے سر پر تیل انڈیلا اور اس سے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسا کر کے خداوند کی قوم اسرائیل پر بادشاہ بنایا ہے، اور تو اپنے آقا احیاب کے گھرانے کو مارے گا، تو میں اپنے بندوں یعنی انبیاء کے خون کا اور تمام خداوند کے بندوں کے خون کا ایزابل کے ہاتھ سے انتقام لوں گا، یہاں تک کہ احیاب کا سارا گھرانہ نابود ہو جائے گا، اور میں احیاب کے ہر ایک کو جو دیوار پر بول کرے، کیا غلام کیا آزاد، اسرائیل میں کاٹ ڈالوں گا، اور میں احیاب کے گھر کو یاربام بن نبات کے گھر کی مانند اور بادشاہ بن احیا کے گھر کی طرح کروں گا۔ ایزابیل کو یزریل کے کھیت میں کتے کھائیں گے اور کوئی نہ ہوگا جو اسے دفن کرے۔ تب اس نے دروازہ کھولا اور بھاگ گیا۔ تب یاہو اپنے آقا کے خادموں کے پاس گیا، انہوں نے اس سے کہا، خیر ہے، یہ مجنو تیرے پاس کیوں آیا؟ اس نے ان سے کہا، تم اس آدمی کو اور اس کے کلام کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ جھوٹ ہے، پس تو ہمیں بتا۔ اس نے ان سے کہا، اس نے مجھ سے یوں یوں بات کی اور کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسا کر کے اسرائیل پر بادشاہ بنایا ہے۔ تب انہوں نے جلدی کی اور ہر ایک آدمی نے اپنی پوشاک لے کر اس کے نیچے سیڑھیوں کی چوٹی پر بچھائی اور نرسنگا پھونکا اور کہا، یاہو بادشاہ ہے۔ یہودا اور اسرائیل کے بادشاہوں کا قتل۔
سو یاہو بن یوشافات بن نمشی نے یورام کے خلاف سازش کی، اور یورام اور تمام اسرائیل آرام کے بادشاہ ہزائل کے ڈر سے راموت جلعاد کی حفاظت کرتے تھے، اور یورام بادشاہ واپس گیا تھا تاکہ ان زخموں کا جو اس نے شاہ آرام ہزائل کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے آرامیوں سے کھائے تھے یزریل میں علاج کرائے۔ تو یاہو نے کہا، अगर तुम्हारा दिल चाहे तो किसी को शहर से भाग कर निकलने न दो कि वो जाकर यज़रियेल में खबर पहुंचाए। और याहू गाड़ी में सवार हुआ और यज़रियेल को गया, क्योंकि योराम वहां बिस्तर पर पड़ा था और यहूदा का बादशाह अहज़िया उसके देखने को वहां आया हुआ था। और यज़रियेल में एक पहरादार ने, जो बुर्ज पर खड़ा था, याहू के ग्रोह को आते देखा और कहा, मैं एक ग्रोह को देखता हूं। तो योराम ने कहा, एक सवार को ले और उनके मिलने के लिए उसे भेज, और वो पूछे कि खैरियत है। तब एक सवार गया और उन्हें मिला और कहा, बादशाह यूं कहता है कि खैरियत है। याहू ने कहा, तुझे और खैरियत को क्या, तू मेरे पीछे हो ले। तो पहरादार ने खबर देकर कहा कि कासिद उनके पास पहुंचा पर वापस नहीं आया। तो उसने एक दूसरे सवार को भेजा, वो उनके पास गया और बोला, बादशाह यूं कहता है, क्या खैरियत है। याहू ने कहा, तुझे और खैरियत को क्या, तू मेरे पीछे हो ले। फिर पहरादार ने खबर दी और कहा कि वो उनके पास पहुंचा पर वापस नहीं आया, और हांकना याहू बिन निमशी के हांकने की तरह है, क्योंकि वो तेजी से हांकता है। योराम ने कहा, गाड़ी जोतो। तो उसकी गाड़ी जोती गई। तब शाह इसराइल योराम और शाह यहूदा अहज़िया अपनी अपनी गाड़ियों में याहू के इस्तकबाल के लिए बाहर निकले और नाबोत यज़रियेली के खेत के पास उसे मिले। जब योराम ने याहू को देखा तो उसने कहा, ऐ याहू, खैरियत है। उसने कहा, खैरियत कहाँ है, जब तक कि तेरी माँ इज़ाबल की बदकारियां और जादूगरियां कसरत से हैं। तब योराम ने बाग मोड़ी और भागा और अहज़िया से कहा, ऐ अहज़िया, दगाबाजी है। तब याहू ने अपने हाथ से कमान खींची और योराम के दोनों शानों के दरमियान तीर मारा, तो तीर उसके दिल के पार हो गया और वो अपनी गाड़ी में गिर गया। तब याहू ने फौज के सरदार बिदकर से कहा कि उसे उठाकर नाबूत यज़रियेल के खेत में फेंक दे, क्योंकि मुझे याद है कि जिस वक्त मैं और तू सवार होकर उसके बाप अहियाब के पीछे गए थे, तो खुदावन ने ये बोझ उस पर रखा था और कहा था कि नाबोत के खून और उसके बेटों के खून के सबब से, जो मैंने कल के रोज देखा, खुदावंत फरमाता है, मैं इसी खेत में तेरा बदला लूंगा। खुदावंत फरमाता है, सो अब तू उसे उठा और खुदावंत के कॉल के मुताबिक खेत में फेंक दे। जब शाह यहूदा अहज़िया ने यह देखा तो बैते जान की राह से भागा, और याहू ने उसका पीछा किया और कहा कि उसे तीर मारो। तो उन्होंने उसे जूर की चढ़ाई में, जो यबलियाम के करीब है, गाड़ी ही में तीर मारे, और वो भागकर मजद्दो में आया और वहां मर गया। तब उसके मुलाजम उसे गाड़ी में डालकर यरूशलम में लाए और दाऊद के शहर में उसके आबाओ अजदाद के साथ उसकी कब्र में उसे दफनाया। और योराम बिन अहियाब के 11वें वर्ष में अहज़िया ने यहूदा पर बादशाही की।
इज़ाबल की मौत। फिर याहू यज़रियेल में दाखिल हुआ। जब इज़ाबल ने सुना तो अपनी आंखों में सुरमा लगाया और अपना सिर संवारा और खिड़की से झांकने लगी। जब याहू दरवाजे में दाखिल हुआ, वो बोली, ए जमरी, अपने आका के कातिल कैर तो है। याहू ने अपना मुंह खिड़की की तरफ उठाया और कहा, कौन मेरे साथ है, कौन? तब दो या तीन ख्वाजा सराओं ने सर झुकाया, तो उसने कहा, इसे नीचे गिरा दो। सो उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया और उसका खून दीवार और घोड़ों पर पड़ा, और याहू ने उसे सम्मो तले रोंदा। फिर वो अंदर गया और खाया और पिया और कहा कि उस मलाउन औरत को देखो और उसे दफन कर दो, क्योंकि वो बादशाह की बेटी है। तब वो गए कि उसे दफन करें, मगर उसकी खोपड़ी और उसके पांव और उसके हाथों के सिवा कुछ ना पाया। सो उन्होंने लौटकर खबर दी, तो उसने कहा, ये खुदावंद की वो बात है जो उसने अपने बंदे इलियास तिशबी की जुबान से कलाम करते हुए फरमाई, कि यिज्रियेल के खेत में कुत्ते अजाबेल का गोश्त खाएंगे और इजाबेल की नाश यिज्रियेल के खेत में गोबर की तरह होगी जो खुले मैदान में पड़ा हुआ हो, यहां तक कि ये ना कहा जाएगा कि ये इजाबेल है।